ओम शांति। दूसरी बार कहने की जरूरत तो नहीं है ना। इस हॉल में जितने बहन भाई बैठे हैं, जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, क्या आप जीवन मुक्त नहीं हैं? अगर आप जीवन मुक्त हैं और जितने ज्यादा जीवन मुक्त फील करते हैं, तो उतना खुशी से और फटाफट अपना दायां हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बाबा खुश हो गया, आप भी खुश हो गए। जब आप जीवन मुक्त हैं ही हैं, तो फिर जीवन मुक्ति के भाषण करने की सुनने की क्या जरूरत है? फिर भी व्यक्ति को अपनी विशेषताओं का पता लगता है, कोई रिपीट करता है तो खुशी होती है। तो इसलिए आपकी जीवन मुक्ति की खुशी की सेलिब्रेशन कहो या बधाई कहो, तो जब कोई अच्छा काम होता है खास खुशी का, तो एक दूसरे को बधाई देते हैं, है ना? तो आज हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि उसने हम सबको, सारी दुनिया अलग है, सब अपने हर ब्राह्मण बच्चे को न्यारा प्यारा जीवन मुक्त अलौकिक उड़ता हुआ पंछी बना दिया। अगर आपको खुशी है तो ताली बजा लो। और डबल खुशी इस बात की है कि सिवाय बाबा के ब्राह्मण बच्चों के और सिवाय संगम युग के, किसी भी युग में हम जीवन मुक्त हैं उसका अनुभव नहीं हो सकता। देवता जीवन मुक्त हैं पर उनको पता नहीं है कि हम जीवन मुक्त हैं। हम हैं और हमको पता है जीवन मुक्त है, तो जिसको पता होता उसको खुशी होती है ना। तो इसलिए हम हैं भी और हमें पता भी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर आपको? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक तो सारी दुनिया की, सारे कल्प की आत्माओं को ले लो और एक बाबा के बच्चों को ले लो, जो एक बार नहीं, अनेक बार, अनगिनत बार, अनेक कल्प कल्प जीवन मुक्त रहे हैं और जीवन मुक्त रहेंगे। इसके लिए आपको फिर क्या करना चाहिए? फिर हम क्या कहेंगे? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, तेरी कमाल है। अब बाबा ने हमको पता भी नहीं लगा, बाबा ने हमको जीवन मुक्त कर दिया। दुनिया के लोग मुक्ति सारे चाहते हैं, दुख की दुनिया है, कहीं ना कहीं दुख मिल ही जाता है रास्ते में। जब ज्यादा मिलता है तो कहते हैं भगवान छुड़ा दे। अच्छा, कह तो देते हैं, लेकिन अगर सचमुच भगवान कहे कि चलो छुड़ाता हूं चलो, तो उनको तो पता नहीं कहां जाना है, तो कहेंगे नहीं बाबा हम यही ठीक है, हम तो वैसे ही कह रहे थे, है ना। अच्छा, क्योंकि छुड़ा तो दे पर ले जा कहाँ, उनको पता नहीं है। तो खुश कब होते हैं, भले दुखी हैं, कितने अशांत हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, कोई उनको कह दे धनवान भव, आयुष्मान भव, उत्तरवान भव, तो खुश होते हैं, आपको आटा भी दे देंगे, कोई दान भी दे देंगे। वरना तो जा तेरा आज ही तुझे मुक्ति मिल जाए तो कहेंगे जाओ यहां से। इसलिए बाबा कहते हैं वो जो बोलते हैं उसका भी उनको मिल जाए तो पता नहीं क्या होना। तो बाबा कहते हैं दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर 800 करोड़ आत्माओं की दुनिया के अंदर टेम्परेरी कोई हो सकता, कोई हंस रहा हो। अच्छा, लेकिन पद्मा पदम सदा के लिए, सदा कलप कलप के लिए महान 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 भाग्यशाली अगर कोई है और कोई उस घर में बैठे हैं जहां से भाग्य बढ़ता है, हैं? तो बाबा कहते मेरे घर आ जाओ, किसी बड़े के घर जाओ, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिल ही जाता है। तो मेरे घर आके जो बैठे हैं, सचमुच आके बैठ गए, एक तो होता है बैठेंगे, बैठना चाहिए ना, तो उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। और कहां बैठे हैं, कौन से हॉल में बैठे हैं, चलो भाई पहले पूरा तो सुन लो, कौन से हॉल में बैठे हैं। डायमंड सतयुग है, गोल्डन जिसको हम सब चाहते हैं स्वर्ग में चलो। संगम युग क्या है, डायमंड। तो डायमंड बढ़िया चीज है ना, इसलिए डायमंड आत्मा बन जाए और आत्मा ऐसी डायमंड बन जाए जो दूसरा भी टच करे वो भी डायमंड बन जाए, उसकी शक्ति बाबा ने आपको पावर दी है कि दुनिया में किसी को भी जीवन मुक्त बनना है तो आपके पास आएगा, नहीं तो बन नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम शरीरधारी हैं, बनाएगा बाबा रास्ता, हम बताएंगे। और हर एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा इसका अधिकारी है। तो इसमें बेसिक बात, किस कारण से हम लोग ये सारा मजा लेते हैं, एक शब्द में कोई बता सकता है कि एक है ये दुनिया, इसको क्या कहते हैं लोक, और लोक की जो हर चीज होगी वो लौकिक होगी, ठीक है। लोक की चीज तो लौकिक होगी ना। अच्छा, हम क्या हैं, हम रहते इसी लोक में हैं, हमारे पास भी लौकिक चीजें हैं, ये शरीर भी लौकिक है, लेकिन हमारा जन्म और हमारा जीवन क्या है, अलौकिक। तो अलौकिक क्या होता है, कोई खास चीज जो कह भी ये चीज तो सारी दुनिया में नहीं मिलती, ये तो अलौकिक चीज है। तो हम सब क्या हो गए, अलौकिक। तो हमारा जन्म ही अलौकिक हो गया, इसलिए इस लोक में रहते हुए भी कोई अलौकिक रहे हैं तो क्या होगा। जैसे मान लो बाबा कहता है किसी देश की क्वीन भारत में आ गई और भारत में आके यहां कुछ दिन के लिए आई है, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्वीन भारतवासी है, या क्या कहेंगे, किसी दूसरे देश की वासी है, आजकल भारत में आई हुई है, जहां की वासी है उसका ध्यान जाएगा। तो हमारे को लेने वाला कौन है, ले जाने वाला परलौकिक और उसके साथ अलौकिक दोनों मिलके आ गए। और हमको क्या कहा, दुनिया में किसी को पता नहीं कहां जाना है, आगे क्या हो रहा है, आगे पुनर्जन्म भी बंद होने वाला है। तो हमको सारा उसने बता दिया कि तुम इस लोक में रहो, लेकिन जैसे राजदूत होता है किसी देश में, वो कहते टेम्परेरी हूं, और रहो अलौकिक। और बाबा कहता है अलौकिक से भी ऊपर वाला हमको कहां ले जाएगा, हैं, परलोक। तो आगे हम शरीर छोड़ते थे भक्ति में तो कह देते थे जी परलोक सुधार गया, अब पता नहीं सुधारा या नहीं सुधारा, या स्वर्गवास हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, स्वर्गवास हो गया ब्राह्मण को बुला के नरक का खाना खिला रहे हैं उसको। अच्छा, अब बाबा कहता है असली परलोक से धारणा और स्वर्गवास होना। परलोक तो सबको ही सुधारना है, चाहे डंडे खा के सुधर जाए, लेकिन हम उससे पहले जब वो एक्चुअल आएगा, हम किसी भी वक्त जितनी बारी चाहे क्या कर सकते हैं। आपको पावर क्या है कि एक सेकंड में चाहे परलोक सुधार जाओ चाहे स्वर्गवास हो जाओ, यहां के भी रहो वहां के भी रहो, दोनों हाथ में लड्डू। तो ऐसा कोई दुनिया में है या था या होगा? अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अपने भाग्य पर नाश करना चाहिए कि वाह 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 वाह। अच्छा, अब बाबा कहता है कि किसी को ऐसा भाग्य मिल जाए पक्का और उसको कोई छीन भी ना सके, फिर भी कोई कहे कि हाँ जी है तो सही, अनुभव तो होता है, मधुबन में ज्यादा अनुभव होता है, भट्टी में बैठते हैं ज्यादा अनुभव होता है, पर हर वक्त नहीं होता, फिर क्या फायदा है जी? आपको एक घंटे का अनुभव हो जाए, दो घंटे का हो जाए, छह घंटे का हो जाए, हर वक्त ना हो तो फिर क्या होगा? आप खुद को डायमंड फील करेंगे और दूसरे को भी डायमंड बना सकेंगे? किसी वक्त आपका चेहरा उतरा हुआ है और कोई आ जाए मैं डायमंड बनना है, तो पहले तो देखेगा कि इसमें तो मंदिर की मूर्ति अच्छी है, वो कम से कम एक जैसा तो रहती है मुस्कुराती हुई, ये तो सुबह तो बहुत खुश थे, अब क्या हो गया इनको? दिल भी सोचता है लेने वाला आ रहा है, बाबा कहता है तुमने हर वक्त देना है, हम कह रहे हैं कि क्या आ गया, हम तो थके हुए हैं, क्यों आ गया डायमंड बनने, दोपहर को शाम को आना है। इसलिए बाबा कहता है कि सदा के लिए सब ब्राह्मण जब हमको स्मृति बाबा दिलाता है, हम खुद स्मृति में आते हैं तो सचमुच टॉप के ऊपर चले जाते हैं। फिर क्या होता है बीच बीच में कि सदा टॉप पे नहीं रहते, आगे लोग चोटी रखते थे कि हम टॉप पर हैं, आजकल चोटी क्यों नहीं रखते कि भी सदा तो रहते नहीं, ऊपर से चोटी रखी हुई है बैठे बीच में है तो गड़बड़ है ना, उन्होंने चोटी रखना ही बंद कर दिया। इसलिए आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जब हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया और क्या रह गया? जैसे बाबा कहता है कि दशहरा मना लिया, रावण मरा ही नहीं, और रावण जाके कब मरेगा? जब महाभारत होगी, क्योंकि दशहरे में हम क्या करते हैं, भाई राजा है रावण, उसका भाई है, उसका बेटा है, सारे खानदान को, जैसे नेपाल में एक बार सारे राज खानदान को खत्म कर दिया। बाकी लंका निवासी कहां गए? उनके अंदर भी तो आसुरी संस्कार है ना, भले वो छोटे हैं, प्रजा है रावण की, वो तो है ना, तो हमने उसको मारा कि नहीं मारा? नहीं तो हम बड़े खुश हैं रावण मर गया और उसके चेले हमें इधर उधर से अपना असर दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, आज के डॉक्टर भी कहते हैं आपको कोई बीमारी हो जाए ऐसी दवाई देंगे शाम तक ठीक है। अब कह जी मैं तो ठीक हो गया, कहते नहीं भाई पांचों दिन दवाई खानी है, पूरा कोर्स करना है, नहीं तो वो छोटे छोटे जो अंदर है ना वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि दोबारा मेरी दवाई भी असर नहीं करेगी। इसलिए बाबा क्या कहता है कि अंश का मतलब था टुकड़ा जरा सा, और वंश ऐसे अंश का पूरा खानदान, जब तक उसको हमने नहीं मारा, काम को मार दिया, काम का अंश और वंश भी तो है, ऐसी क्रोध का भी है, लोभ सब का है, तो हम बड़े खुश हैं। तो मोटे को मारा है तो मोटे रूप से हम खुश हैं, लेकिन छोटे को नहीं मारा है तो कहा जाता ना जो छोटा होता है वो बहुत खतरनाक होता है। छोटे को तो भगवान सुभान अल्लाह कहता है कि अर्थात वो ऐसा काम कर सकता है, आपने सारी नाव ठीक कर ली अच्छी तरह, एक जरा सा छेद रह गया, जरा सा। अब नदी पार जाना है तो बीच में जाके वो छेद ने अपना काम शुरू कर दिया और आधी नाव में पानी आ गया तो खतरा होगा कि नहीं होगा। इसलिए आप देखिए कि हमको बाबा ने क्या कहा हुआ, एक तो कहा हुआ एक एक नामी, एक भगवान को याद करना है। हम कहते हैं क्या हर्ज है, एक को भी कर लो बाकियों को भी कर लो, है? बाप तो है ही, परिवार भी तो है, भाई बहन भी तो हैं, उसके साथ भी तो सतयुग में तो हमने वहीं उनके साथ ही रहना है। अब बाबा कहता है कि मैं जो हूं परमात्मा तो चेंज नहीं होता, सदा ही शिव है, उसका नाम ही सदा शिव है, और जो हमारे भाई बहन हैं उसके बच्चे एक तो एक समान नहीं है और कभी चेंज होते रहते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की तो माला भी बनाना मुश्किल है, है? तो इसलिए अब हम जब व्यवहार में आते हैं हम उस एक को कनेक्ट होके आते हैं कि मैं भी उससे कनेक्ट होके हूँ, आप भी उससे हैं, या हम उसको थोड़ा सा भूल के भाई बहनों को देखने लग जाते हैं। अब अगर आप उसको देखेंगे तो एक समान रहेंगे और भाई बहनों को देखेंगे तो क्या होगा, भाई बहन तो रंग बिरंगे हैं, तो फिर क्या होगा, उसको हम इनडायरेक्ट देखेंगे। एक तो होता है बाबा कहते हैं मेरी डायरेक्ट संतान हो, और एक है ये मेरे भाई बहन है और हम दोनों का पिता एक है, इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, उससे तो दूर हो गए। इसलिए हमारा जो एक रस रहना चाहिए एकदम, जिसको कहते एक बल एक भरोसा, हमें बल भरोसा एक भी है, साथ अपने बैंक बैलेंस का भी भरोसा है, अरे मेरे पास तो क्या है, कुछ भी हो जाएगा, पानी 100 रुपए बोतल मिलेगा मैं खरीद सकता हूँ, तो ये भी भरोसे हमने रखे हुए हैं। इसलिए बाबा कहता है एक तो नहीं रहा, अच्छा आगे चलो, काम का अंश बॉडी कॉन्शियस से द्वापर युग में काम विकार पैदा हुआ, ठीक है, सतयुग में बॉडी कॉन्शियस नहीं होता, काम विकार भी नहीं होता। अभी हम संगम पर हैं, मोटे रूप से काम विकार को हमने छोड़ दिया, काम विकार का कर्मना छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से टेस्ट करो अच्छी तरह से तो आपको उसका अंश मिलेगा। वो अंश क्या मिलेगा, उसको हम रूप दे देते हैं स्नेह का, अलौकिक स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, कि कईयों के साथ हमको सेवा करना अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लगता है, खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं अलौकिक स्नेह में कोई हर्जा नहीं, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है, अगर अलौकिक स्नेह की लिमिट को क्रॉस कर जाए तो जैसे सीता ने लाइन क्रॉस की तो काम विकार का अंश अपना काम करना शुरू कर देगा, तो फिर वो जो है अति इंद्रिय सुख है, फ्रीडम है, जीवन मुक्त है, वो मुक्त नहीं रहेगा, ऊपर से मुक्त रहेगा, कहीं ना कहीं रस्सी फंसी हुई रहेगी। तो करके देख लो, इसी प्रकार से क्रोध पे आ जाओ, क्रोध हमने छोड़ दिया, बाबा ने आज भी मुरली में कहा है, बाबा कहता है कि दूसरों की सेवा करते हो उसमें आपका कल्याण हो जाता है, पब्लिक की स्टेज पर रहते हो तो दूसरे को समझाते हो क्रोध नहीं करना, तो आप तो करना मुश्किल हो जाएगा, आप करोगे तो क्या होगा, हर वक्त स्टेज पर रहो। लेकिन क्रोध के भी बाल बच्चे बहुत बढ़िया हैं, वो क्या है कि किसी से कईयों के तो हमारी पटती है, बड़े अच्छे लगते हैं, किसी किसी से हमें ईर्ष्या आ जाती है, ये ऐसा क्यों? बाबा ने कहा ड्रामा एक्यूरेट है, पर ये ऐसा क्यों? मैं ड्रामा को चैलेंज कर रहा हूं। फिर थोड़ी सी घृणा आ जाती है। आपके कमरे में किसी को डाल दो हैं, आपके कहेंगे हमारे कमरे में मेरे ही एरिया वाले आए, खाना खाने जाएं तो भी मेरे ही सेंटर वाले मेरे आसपास बैठे। अरे वो तो रोज ही बैठते हैं, यहां तुम्हें मौका है दूसरों के, नहीं अच्छा लगता है ये। अच्छा फिर ऐसे भी लोग होते हैं कहेंगे इसको देखते तो मेरी अवस्था खराब होती है, इससे अच्छा है मेरी अवस्था ठीक रहे तो मैं इससे दूरी रहूं, किनारा कर लूं। अब बाबा कहते हैं न्यारा और किनारा में तो फर्क है कि मैं मेरी अवस्था डामाडोल हो रही क्योंकि मैं भगवान को तो साथ कनेक्टेड नहीं, उसको देख के उसके प्रभावित हो रहा हूं रॉन्ग चीज से। इसलिए बाबा कहता है तो या फिर दूसरे को नीचा करके, बाबा कहते हैं मेरे सारे बच्चे हैं, सारे ब्राह्मण हैं, मेरे लिए तो एक एक बच्चे की विशेषता देखनी है, मुझे तो उनको स्वर्ग में ले जाना है। हम कहें मैं जरा ज्यादा अच्छा हो जाऊं, कैसे हो जाऊं, वो भी अच्छा हो जाए मैं भी अच्छा हो जाऊं, इस तरह नहीं, मैं कुछ ज्यादा अच्छा हो जाऊं ताकि वो जरा कम अच्छा दिखे। तो बाबा कहता फिर हो गई आपकी पीस, शांति भी चली गई और क्रोध तो रहा गुप्त रूप में, जिसको कहते हैं नफरत करना, घृणा करना, फासला रखना। अच्छा अब लोभ पे आ जाइए। अब लोभ का रूप हम क्या लेते? आवश्यकता, इस चीज की तो मुझे जरूरत है ना। बाबा कहता जरूरत है तो ठीक है,
तुमको आना है।
हाँ जी लोभ, मोटे रूप से तो हमने लोभ छोड़ दिया। बीके को लोभ क्या करना है, बीके को तो पता है आगे दुनिया चलनी नहीं, तो जो कुछ है खाओ पियो मौज करो, उसका फायदा हो गया और ही ज्यादा, जमा करने की जरूरत नहीं, रिश्तेदार संबंधियों से छुट्टी। लेकिन अपने लाइफ में हमें जरूरत तो पड़ती है ना, इसलिए हम शब्द यूज करते हैं आवश्यकता है। बाबा कहते ठीक है आवश्यकता है, पर हर चीज की हद होती है, आवश्यकता भी तो कोई हद है ना, तो हद तक आवश्यकता है। अगर हद को क्रॉस कर गया तो फिर कहेंगे लोभ है। मान लो किसी को कार की आवश्यकता है, असली आवश्यकता, आजकल कार बहुत जरूरी है, लेकिन जब मैं कहूं कार तो लेनी है चलो, तो फिर जितने सब बीके हैं उनमें जिन्होंने जो जो भी कार ली है, मेरे पास तो पैसा है, उनसे भी बड़ी आजकल किया नाम की कार बहुत अच्छी आई है, वो क्यों ना ले लूं मैं। तो फिर क्या हुआ, लाइन क्रॉस की तो लोभ आ गया। इस प्रकार से फंसते हैं, किसी भी चीज में होगा, लिमिट क्रॉस की सीता ने तो गई उसकी जेल में। अच्छा, फिर मोह है। अब जो मोह है, मोह का बाबा कहते हैं मोह तो हमने छोड़ दिया, नष्टो मोह तो हमारा स्लोगन ही है, इस दुनिया से अब हमें क्या मोह है। जैसे छाछ को बिलोने से मक्खन निकले आता है, तो मक्खन वापस छाछ में नहीं जा सकता, करके दिखाओ कभी मक्खन वापस जाता है इतना टुकड़ा भी। तो सारे बीके तो बीके हो गए, अब बीके को कहो दुनिया में चले जाओ, कोई जबरदस्ती भी करेगा नहीं जाएंगे, बीके को कहो तुम शरीर हो, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा लगता है, ये शब्द है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगता है तो हर चीज अच्छी लगनी चाहिए, फिर चट्टियों वाला कपड़ा भी अच्छा लगना चाहिए, बढ़िया भी अच्छा लगना चाहिए, खीर भी अच्छी लगनी चाहिए और खिचड़ी भी अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये ज्यादा अच्छा लगता है, पसंद करते हम, तो फिर अच्छा में तो फर्क आ गया ना, तो जो ज्यादा अच्छा लगता है लिमिट के बाद उसको मोह हो गया हमारे पास। अब सबसे बड़ा वंडरफुल चीज जिससे हर एक बीके को बहुत ध्यान रखना है वो है मैं। अच्छा, अब सब जानते हैं कि बाबा ने हमको क्या कहा कि जब मैं बच्चों को जन्म देता हूं तो जन्म बर्थडे गिफ्ट जन्म घुट्टी में ही हर ब्राह्मण को मैं कोई ना कोई विशेषता देता हूं, अलौकिक चीज देता हूं, क्योंकि है ही जन्म अलौकिक, तो बाकी दुनिया के पास वो चीज नहीं होगी जो बीके के पास होगी। अब उसने आपको कोई विशेषता दे दी, बाबा ने मुरली में कहा है कि देखो भोग बनाना वो भी एक सेवा है, भोग लगाना वो भी एक सेवा है, ठीक है। अब मेरी ड्यूटी भोग बनाने की है तो मुझे कम से कम ये भी नशा होना चाहिए कि मेरे को बाबा ने भोग बनाने की ड्यूटी दी हुई है और मैं भोग को जिस तरह बनाना है, जिस स्थिति में रह के बनाना है, उसकी वैल्यू को रख के बनाना है, वो हर एक उसको खाएगा, उसमें कोई टेस्ट की बात नहीं है, उसमें बाबा की शक्ति भरनी है। और वो सोचने लग जाए मेरा तो काम थाली बना के रखना है, असली तो जो भोग लगाता है वो है वैल्यूएबल, तो फर्क पड़ गया कि अपनी ड्यूटी को विशेष ना समझ के। बाबा ने कहा हर बच्चा मेरी सारी स्वर्ग बन रहा है, हर बच्चे की विशेषता है, हर काम इम्पोर्टेंट है। अगर आप भोग बनाएंगे नहीं तो वो लगाएगा क्या, ड्राई फ्रूट लगाएगा। इसलिए वो विशेषता मुझे बाबा ने दी। अब गलती खाते 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 बॉडी कॉन्शियस में आकर के मैंने समझा मेरे में बहुत बहुत विशेषता, देखो मेरी कमाल है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो बाबा कहता अपने आप उस भगवान की विशेषता को मेरी कहना, ये एक बड़ी सूक्ष्म सी बात है, हम उसमें आसानी से फिसल जाते हैं। मैंने मेहनत की है, मैंने ये काम किया है, मैंने इतना सहयोग दिया है, ये जो मैं शब्द है, तो बाबा ने जब तीन शब्द कहे थे शरीर छोड़ते समय, व्यक्त होते समय, तो यही कहा था कि साकार में निरअहंकारी। तो अहंकार अर्थात मैं, तो भगवान की विशेषता को अपनी कहना, और भगवान के घर में है तो हमारी विशेषता यूज हो रही है, अगर हम भगवान के घर में ना हो तो वो विशेषता की क्या वैल्यू है। मान लो मुझे बहुत अच्छे कपड़े धोने आते हैं, सफेद बढ़िया, अगर मैं भगवान के घर में धुलाई करता हूँ तो मेरी और उसकी, भगवान के बच्चों के लिए भगवान के कार्य करता हूँ, अगर मैं भगवान के घर में ना हूँ, बहुत अच्छे सफेद कपड़े धोने वाले दुनिया में लाखों हैं, मैं भी कोई दुकान खोल के बैठा हुआ हूंगा। तो इसलिए ये जो है अहंकार, ये भी हमको गड़बड़ कर जाता है। तो ओवरऑल बाबा कहता है मेरे सारे बच्चे मैं देख के बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि सबको मैंने अलौकिक बनाया है और सबको डेफिनेटली स्वर्ग में भी जाएंगे। आज की दुनिया में भी बाकी की भेंट में बड़ी बड़ी समस्याओं को क्रॉस कर जाएंगे, उनको फील ही नहीं होगा, ये पक्की बात है। लेकिन उससे आगे अगर आप चलेंगे कि मेरा वहां पर क्या स्थान है, तो बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई हुई हैं कि अगर कोई उदास रहता है, उदासी जिसको आती है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो सतयुग में दासी बनेगा। अब क्योंकि भगवान के घर आके इतना बड़ा वर्षा समय तालियां बजाई, कितनी बारी हाथ उठाए हम वो हैं, और मुझे उदासी आ जाए, हैं? उदासी के साथ उबासी भी जोड़ लो, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखो, तो मेरा पद तो निश्चित हो गया। अगर मेरे पास ज्ञान धन बहुत है लेकिन मुझे उस ज्ञान धन को यूज करना नहीं आता, विधान है विधि नहीं आती, तो फिर मैं सतयुग में क्या बनूंगा? बाबा कहता है वहां रॉयल प्रजा बनोगे, बहुत धन होगा वो होगा, लेकिन अधिकारीपना नहीं होगा, यूज करना कोई दूसरा यूज। आजकल भी होता है कि नहीं, नेता लोगों के पास पावर होती है, कोई ना कोई बिजनेसमैन अमीर आदमी उनके साथ रहता है, उसका धन वो यूज करता है, अमीर को भी साथ मिल जाता है, लेकिन वो अधिकार नहीं रखता। तो दास भी अधीन और ये भी अधीन, ऐसे बाबा ने हर एक की स्टेज बताई है। तो कहने का भाव ये है कि हमको यहां पर संगम पर इतनी, बाबा ने कहता है, कई बारी बाबा ने अनेक तरीके से कहा है, कभी ऐसा सेवाधारी बाप मिला, कल भी मुरली में कहा था सोशल सर्विस करने वाले होंगे लेकिन वो अपने खाने पीने का प्रबंध तो उसमें रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो इतना हाईएस्ट होकर के और बिल्कुल सेवा करे और बच्चों की हर नाज नखरा भी सहे, उसका सब कुछ कहे, बच्चा भागने की कोशिश करे फिर उसको पकड़ के लाए, कहते हैं हमने थोड़ी भगवान को पाया है, मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के निकाला है, तो सारी हम कहते भी तेरा शुक्रिया। अब बाबा कहता है कि ऐसे बच्चे होकर जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, सतयुग के देवता हर चीज का अनुभव कर सकते हैं, जन्म जन्मांतर कर सकते हैं, लेकिन अति इंद्रिय सुख यानी इंद्रियों से न्यारा होने का सुख नहीं कर सकते। और बाबा कहते मैंने आपको काम क्या दिया, कोई मेहनत नहीं दी, कोई नहीं, क्या किया है, नाचो गाओ खाओ और सो जाओ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाचो गाओ म्यूजिक सुनो, क्योंकि गाने के साथ संगीत भी चाहिए, और जब नाच के थक जाओ तो सो जाओ, इससे आसान तो कोई तरीका नहीं है देवता बनने का। भगवान कहता क्या है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान सुना अमृत वेले। पहले तो आप जागते ही गाना सुनते हो, म्यूजिक बजता है जागो, हम जागते हैं। अच्छा, तो सुबह उठ करके बाबा का और अपने भाग्य का भक्ति में कीर्तन करते थे, गीत गा लो। अच्छा, अब नाचने वाला क्या करता है कि जिस नाचने वाला जब नाचता है, एक्सरसाइज और चीज है, नाचने वाला जब नाचता है तो उसकी सारी बॉडी किसी न किसी तरह से उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। कभी ऐसे करेगा, कभी हाथ को करेगा, कभी टांग को करेगा। तो बाबा कहते हैं मेरे इतने ज्ञान के नशे में आप खाना बना रहे हो तो भी आप नाच नाच के, कोई व्यक्ति कोई काम होता है खुशी खुशी करता है कि नहीं, जिसको खुशी चढ़ी होती है वो हर काम खुशी खुशी करता है। वो स्नान का भी पता नहीं लगता पानी ठंडा है कि नहीं, खुशी है उसको, चलेगा तो भी उसको खुशी है, इधर उधर दुनिया में कुछ हो रहा हो उसको कुछ लेना नहीं, वो अपने खुश है। तो बाबा कहता है डांस करो, मन आपका नाचे, शरीर आप ही नाचेगा, पता ही नहीं लगेगा। आप अगर खुश हैं, मान लो किसी को आज कोई प्राइज मिलना है, अच्छा यहाँ पर आया कोई वीआईपी ने उसको प्राइज दे दिया, सबने ताली बजा दी, अब बाकी का दिन उसका क्या होगा? वो कमरे में जाएगा, भोजन में जाएगा, उसको कुछ नहीं पता लगेगा मैं क्या खा रहा हूँ। वो प्राइज याद आएगा, मेरे को ताली बजी थी, मेरे को उसने ऐसे किया था, सारा दिन उसका उस खुशी में जाएगा। तो बाबा कहता आपको तो क्या कुछ मिल रहा है, तो आप तो नाचेंगे गाएंगे। और फिर बाबा कहता है जब बहुत कोई डांस कर लेता है तो सो जाता है, उसको नींद भी फटाफट आ जाती है। तो यहाँ सोना क्या है, अशरीरी हो जाओ, अर्थात आपको तो मौज है, जब मर्जी अशरीरी हो जाओ। तो अशरीरी हो गए, बाबा की गोद में सो गए, तो मजेदार लाइफ नहीं, और क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, खाया पिया, डांस किया, गाना सुना और अपना सो गए, जब दिल करो अशरीरी हो जाओ। ऐसे जादू जिसको कहते हैं, भगवान जादूगर है, तो जादूगर उसका जादू हमको सिखाया हुआ उसने कि आप जब चाहो गायब हो जाओ, आपकी कोई निंदा कर रहा है आपसे सुनी नहीं जाती, ठीक है आप गायब हो जाओ, माउंट आबू आ जाओ, आज के हॉल में बैठ जाओ, बोलता रहे, जब थक जाए वापस आ जाओ, अच्छा भाई हो गया कि और बोलना है तूने, छुट्टी। इसलिए जादूगर भी यही करते हैं, कोई चीज को गायब कर देते हैं, कोई चीज को प्रकट कर देते हैं। तो सार कहने का ये है, बाबा ने एक मुरली में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बाबा का ज्ञान इंटरेस्टिंग है, बाबा का ज्ञान रोचक है, बाबा के ज्ञान में रौनक है, और धर्मों वाले जो हैं अंदर अंदर वो भी झुके हुए हैं। इसलिए नहीं, वो कहते हैं हमारे धर्म में तो कुछ है ही नहीं, चर्च में चले जाओ, संडे को ये करे आओ, ना कोई रौनक, ना कोई कुछ, ना कोई कीर्तन, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई सजावट। अच्छा, मोहम्मदन लोग भी यही कहते हैं, वहाँ आप मस्जिद में जाओगे तो खाली खाली लगेगा, अच्छा अपनी ड्यूटी करके आ जाओ। ये बाबा का ज्ञान तो भक्ति मार्ग में भी कितना रौनकदार है, और ज्ञान मार्ग में कितने साल हो गए आप सोचो, जब से बाबा ने मुरली चलानी शुरू की है, उसी मुरली में से इधर किया तो और धुन बज गई, इधर किया तो और धुन बज गई, आपको अलौकिक कर दिया, कभी धरती पर ले आया, कभी स्वर्ग में ले आया, सूक्ष्म में उड़ा दिया। तो इतना शानदार ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं और पढ़ाई की पढ़ाई, खेल का खेल। अब हम यहाँ आते हैं, बाबा मुरली में कहता कि नहीं लौकिक पढ़ाई में कितना टाइम लगता है, कितने साल पढ़ते रहो, ये करो, ये कोर्स, ये किताबें, आजकल बच्चे झुक जाते हैं, मेरी पढ़ाई क्या है। बाबा कहते हैं मैंने तो उसको घटा घटा के 1 वीक कोर्स कर दिया, 3 दिन का योग शिविर कर दिया, और भी उसको घटाओ तो मनमना भव कर दिया, या बाप और बच्चा कर दिया, इससे आसान तो पढ़ाई नहीं। ये पढ़ाई मन में रखो और स्वर्ग के रास्ते पे चलते रहो, अपना काम धंधा भी करते रहो, कुछ छुड़ाया नहीं, कुछ नहीं किया। इसलिए बाबा कहता है कि विदाई देना, इसको विदाई दो, उसको विदाई दो, इसको बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी त्याग करो, पुरानी दुनिया से बैराग करो, आप बधाई देना शुरू कर दो। बधाई तो बड़ी अच्छी चीज है, कोई दिन त्योहार आता है, दिवाली आती है, होली आती है, अच्छा भाई होली मुबारक हो, गले मिल लो। अच्छा उस वक्त कोई होली मुबारक जब करते हैं तो देखते हैं ये बड़ा ये छोटा है, पड़ोसी साल भर घर में नहीं आता, लेकिन होली मुबारक पे उससे भी गले मिल लेते हैं। और फैक्ट्रियों में जाओ तो मालिक अपने वर्करों से गले मिल रहा है, उस वक्त उनको कोई और ख्याल नहीं आता मैं मालिक हूं या वर्कर हूं, पर होली खुशी है, दिवाली मुबारक हो, कोई भी अच्छा काम हो जाता है तो लोग उसकी खुशी में सब भूल जाते हैं। मान लो भारत क्रिकेट खेल रहा है किसी और देश में और भारत की टीम जीत जाती है, वो तो वहां जीतती है, वो खेलने वाले जीतते हैं, लेकिन जो लोग उसकी न्यूज सुनते हैं मिठाई लाके एक दूसरे को खिलानी शुरू कर देते हैं, उस वक्त तो सब भूल जाते हैं, वो कहते हैं भाई हम भारत जीत गया, हम जीत गए, तो खुशी होती है ना। अब बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हमको तो विजय विजय है, वो तो कह रहा आप विजय करते जाओ, मैं लड़ियां लगाता जाऊंगा, तो अपनी लड़ियां ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम। तो सारा संगम युग ही बधाई का है, और तो त्योहार वगैरह मनाते हैं, यहाँ तो रोज ही त्योहार है, तो इसकी भी बधाई, इसकी भी बधाई, कई कविताएं भी बनाते हैं, पहली बधाई इस चीज की, दूसरी बधाई इस चीज की, तो बढ़ते जाओ और बाकी आप ही छूट जाएगा, हमको मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या है। फिर बाबा कहता है जैसे अंश होता है वंश होता है, तो गुलजार दादी का पीछे भोग लगा था, हर महीने यहाँ लगता है, तो गुलजार दादी ने कहा ब्राह्मणों को ना एक खिलौना मिल गया है, वो छोटा भी है बड़ा भी है, उस खिलौने से बहुत खेलते रहते हैं, और उसका नाम था मोबाइल फोन। अच्छा अब सोचो ब्राह्मणों को, और मोबाइल आप अगर मोबाइल फोन में, वो तो दुनिया वालों के लिए बना है, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, सीनरी देख लो वो सीनरी देख लो, तो आपको मुरली की पॉइंट तो भूल जाएगी, तीनों लोकों का ज्ञान भूल जाएगा, वहां कोई कुत्ता नाच रहा है या कोई उल्टी फुल्टी चीज दिखा देते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है। बाबा कहता है समेटो अपनी संकल्पों की शक्ति को, बढ़ाओ संकल्प थोड़े करो, धारणा के करो, जो दूसरे को आप दो शब्द बोलो तो पूरा भाषण हो जाए। तो ये मोबाइल फोन रखना ये एक माया का तरीका है, कि माया ने सोचा मेरे पास आना इनका मुश्किल है, मैं इनके पास चली जाती हूँ, हर एक की जेब में वो मोबाइल फोन रहेगा। यहाँ भी आप घूम के देख लो, मधुबन में आए हुए हैं, सुबह टीचर को अनाउंस करना पड़ा क्लास में कि भाई मोहन तो ठीक है, एक और एम भी है उसको बंद रखना, तो वो हम क्यों करते हैं। या न्यूज सुनना दुनिया की, फलाना मर गया, ये ट्रक गिर गया, ये बिल्डिंग जल गई, हमने क्या लेना। इसलिए बाबा कहता है कि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम समेटने का टाइम है, अगर हम संकल्पों को नहीं समेट पाएंगे, व्यर्थ को नहीं समेट पाएंगे, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड जो डायमंड की, डायमंड कहते हैं इतना सख्त होता है कि उसको कोई चीज काट नहीं सकती सिवाय डायमंड के, तो हम डायमंड आत्मा है जिसका जिसके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े, और बाबा कहते हैं हम प्रभाव डालें उसकी बजाय ये चीजें हम करेंगे तो फिर होगा क्या, न्यारे रहेंगे प्यारे रहेंगे, अतिर इंद्रिय सुख कभी कभी आया करेगा। इसलिए मोटे रूप से बाबा हर बच्चों को शाबाश देता है, बधाई देता है, देखो सारी पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालकर अपने सबसे बाबा के बच्चे बन गए, हंस तो बन गए। अब हंसों ने कितने मोती चुगने हैं, क्वेश्चन ये है, दो मोती चुगने वाला भी हंसी कहलाएगा, है ना, और जो लगातार मोती चुगता जाएगा वो, दादी जानकी भी हंस है, दादी गुलजार भी हंस है, कितने हमारे होली हंस हैं, उन्होंने जिंदगी भर क्या किया। मम्मा के लिए आप सुनाते हैं कि मम्मा बॉम्बे की सड़क, बड़ी सड़क पर कार में जा रही है, रमेश जी कार चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा पुल है सड़क के ऊपर, उसमें किसी कैमरा कंपनी का नाम लिखा हुआ, तो गुजरे कहते अंधे को भी वो दिख जाए कि ये लिखा हुआ, अगर आंखें खुली हैं तो। मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आपने वो बोर्ड देखा? तो मम्मा क्या कहती है? आंखें तो खुली हैं कि मम्मा पुरानी दुनिया की चीज को देखते हुए भी नहीं देखती। अर्थात जब आपका ध्यान और तरफ है तो आप देख रहे हैं पर आपका कोई मतलब नहीं, इसलिए फिर मम्मा मम्मा बन गई। तो हमको ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा ने कितना रोज मुरली को, बोलने वाला तो ब्रह्मा बाबा ही है, मुरली को कैसे वैरायटी करके आज ये आज ये आज ये, हमको 20 साल पहले की मुरली भी आप सुनेंगे, आज भी आप सुनने वाले हैं रिपीट, लेकिन आपको लगेगा नई है, मेरे पर लागू होती है, अभी मैंने ये काम नहीं किया है ना। अब बाबा कहते हैं आखिर तो एंड आना है कि नहीं आना, और आज भी बाबा ने कहा है कि अगर आपने हर वक्त अटेंशन नहीं रखा, मान लो एक घंटा आप साधारण पुरुषार्थ कर रहे हैं, फीवर में नहीं है, और उस घंटे में अंतिम घड़ी आ गई तो फिर क्या होगा? तो फिर जो उस वक्त की अवस्था होगी अंत मते सुगते हो जाएगा। तो साधारणता का तो मतलब ही नहीं है। बाबा कहते व्यर्थ को तो छोड़ो। तो हमारी संगम युग की समय और संकल्प क्वालिटी होना चाहिए, लिमिटेड। जैसे हीरे जवाहरात की दुकान होती है, उसमें महंगा माल होता, कोई राशन की दुकान नहीं है कि बोरी भर के आप गेहूं ले आए। तो ब्राह्मण को ये जीवन बनाना है ताकि अंदर से हम यही चाहते हैं, लेकिन ये जो छोटी मोटी लीकेज हो रही है, बीच में कोई अणु आके हमारी ताकत को खा रहा है, शरीर में भी किसी अंग में रोग हो जाए, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हें तो ये एलर्जी हो गई है, तुम्हें तो ये वायरस लग गया है, इसको ठीक करो, तो हम करते हैं। तो आत्मा का परमानेंट इलाज हो रहा है। तो बाबा इस वक्त कर रहा है, कहते आखिर भी बच्चों को अपने हित में ही इसको पूरा करना है, इसलिए जीवन मुक्त हम हैं। लेकिन पूरे जीवन मुक्त हो, हर वक्त जीवन मुक्त हो, जिसमें बाबा कहते इंद्रियां हमारा कहना माने, जब मैं चाहूं मेरा मन चुप हो जाए तो उसी वक्त हो जाए, 15 मिनट ना लगे, जब मैं चाहूं मेरा मन इस तरफ जाए तो रास्ते में रुकावट ना करे, छोटी छोटी चीजें हैं तो कंट्रोल रहेगा। तो फिर बाबा कहता है आपका कंट्रोल में सारे तत्व आ जाएंगे। अभी भी हम तत्वों के अधीन हैं, हम कह देते हैं संगम युग है, देखो भाई कलयुग की दुनिया के प्रभाव तो आएंगे ही। बाबा ने कह रखा है संगम युग वालों को कुछ भी हो रहा हो, पास वाले घर में आग लग रही हो, इधर अर्थक्वेक आ रहा हो, ऊपर तूफान आ रहा हो, संगम युग वाले इतने अनअफेक्टेड, इतने न्यारे और खुश रहेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वो ये सोचने लग गए ड्रामा में ये गलत है, इसने ये गलत किया, या ये मेरा है, मैं इससे अच्छा हूँ, ये तो फिर शेक आएगा। तो हमको फायदा लेना चाहिए। आप मधुबन में आए हैं, बाबा के घर में आए हैं, यहाँ तपस्या भूमि है, तपस्या भूमि का बहुत प्रभाव होता है। तो जो है कि शांत होकर, ऐसे नहीं दिन पास कर लिया, बाबा की मुरली सुन ली ना, तो आपको बाबा प्रैक्टिकल दिखेगा। जैसे विदेशियों ने बाबा को देखा ही नहीं था, लेकिन उनकी ऐसी स्ट्रांग धारणाएं रही हैं, अपने देश में रहकर उनको सचमुच फील होता, बाबा फील कराता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम ही वो उंगली पकड़े, हम उसको छोड़ दें, हम फिर किसी भाई बहन को देख लिया, कोई कमी देख ली, कुछ 19-20 हो गया, यहाँ ऐसे होता है, कोई पैसे मांग रहा है आपसे, आपको सोचना चाहिए कि कोई कहे कि जी आपको हम बढ़िया कमरा दे देते हैं, आप थोड़ा सा इधर बेटा चढ़ा दो, तो आपको लेना चाहिए। आप बढ़िया कमरा तो दुनिया में भी होटल में भी मिल जाता है, आपको जी हम धरती पर सो जाएंगे घास में, वहां बाबा आपको वो अनुभव कराएगा। तो हम अपने असूलों को ना छोड़ें, कष्ट वष्ट अच्छा है, कष्ट होगा तो राम ज्यादा जपा जाएगा, ये सारी चीजें हमने देखनी है। कहा गया है कि जुल्म करने वाला तो रॉन्ग है ही, जुल्म सहने वाला भी रॉन्ग है। तुम क्यों जुल्म सहता है? इसलिए कोई आपको गलती करता है, आपको ऑफर करता है, लालच करता है, वो रॉन्ग है। लेकिन उस लालच को पूरा करना, यहाँ हम तपस्या करने आए हैं या कि हम रेस्ट करने आए हैं, इसलिए हर चीज में अपने प्रिंसिपल पर रहना, बाबा उसके नंबर देता है। अब अमृत वेला बाबा ने सीधा ही कह रखा है, अमृत वेले आ जाओ, मैं तुम्हें शक्तियों से भर दूंगा, सारा दिन शक्तिशाली रहोगे, इसमें क्या तकलीफ है। हम दिन में 2 घंटे लगाने को तैयार हैं, अमृत वेले भई आंख नहीं खुली, क्या फायदा, वातावरण खराब करेंगे। बाबा कहता है इससे तो ना जाना अच्छा है, आज सारे दिन में ये करना है, वो ढीला हो, मतलब 100 बहाने करके जो बाबा ने कहा वो नहीं करना, तो फिर बाबा कहता फल भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए आप सब ज्ञानी आत्माएं हैं, समझदार आत्माएं हैं, जीवन मुक्त आत्माएं हैं, पर अपनी जीवन मुक्ति को 100% करने के लिए इस वक्त बाबा हमको चांस दे रहा है। तो यहाँ आप ये ऐसा नहीं कि बैठकर ही आप भट्टी कर रहे हैं, आप समझिए कि ये स्थान ऐसा है, जादू का स्थान है, अगर आप सच्चे सोच कर आएंगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ओम शांति।
उसी दम